Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
वहां से भी निराश हताश होकर अब इनसे बड़ा कोई नहीं है, इसका मतलब ये जन्म में हमको गुरु मिलने वाला नहीं है, निगुरो ही रहेंगे भैया। बड़े दुखी होकर सनत कुमार कैलाश से भी वापस आ रहे थे। अंतर्यामी भगवान शिव के हृदय में करुणा भाव जग गया, उनको मालूम हो गया ये सनत कुमार चार कुमार दीक्षा लेके शास्त्र विधि पूरा करने के लिए गुरु खोजते हुए चल रहे हैं, लेकिन गुरु खोजने के लिए इन्होंने आंख में दोष का चश्मा पहन लिया, गुण न देखकर दोष ही देखते हुए चलते हैं, है ना? लेकिन फिर भी इनका उद्धार तो करना चाहिए। इनके हृदय में दोष होने पर भी ये जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, शास्त्र विधि को पूरा करना चाहते हैं। तो यो यस्या, जो जैसी भावना करता है उसकी भावना अनुसार फल देना परमात्मा का मुख्य प्रयोजन है। तो पार्वती को कहा कि तुम नीचे बैठो। बोले क्या बात है महाराज, आज नीचे क्यों बिठा रहे हो, हमेशा गोद में बिठाते हो, अब आज नीचे। बोले तुम बैठो, थोड़ा भोजन वगैरह बढ़िया पका लो, तो हम एक जरूरी काम में जा रहे हैं। भगवान शिव निकले और छोटा 5 वर्ष के स्वरूप को धारण करके कान में जनेऊ है और बागंबर निकाल दिया है, एक कौपीन पहन रखा है और बस पीछे पीछे सनत कुमार जिधर जा रहे थे पीछे पीछे भगवान शिव दौड़ते हुए जा रहे हैं। सनत कुमार 16 वर्ष के हैं, भगवान शिव 5 वर्ष के, दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब सनत कुमार को भी क्रॉस करते हुए आगे निकल गए, देखा ही नहीं, हाँ देखा ही नहीं शिव जी ने, सनत कुमार भी हैं, कुछ नहीं, दौड़ते हुए निकल गए। सनत कुमारों ने देखा, अरे ये बालक है, बहुत छोटा बालक है, केवल कौपिन पहन रखा है, जनेऊ पहन रखा है, शरीर में और कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, ये कौन है, कहां से आ रहा है? लेकिन जो भी हो ये बड़ा त्यागी है, कम उम्र में इतना बड़ा त्याग, हम तो 16 वर्ष के हो गए और वो तो 5 वर्ष में इतना त्यागी हो गया, उम्र से क्या, हमको गुरु चाहिए, जैसा गुरु खोजे हैं हम खोज रहे हैं, ये हाव भाव में लक्षण से तो वैसा ही है, लेकिन वो हमारे तरफ देखता ही नहीं है, हमसे बात ही नहीं किया, दौड़ के जा रहा है। तो सनत कुमार के मन में श्रद्धा जग गई उस दृश्य को देखकर, शिवजी के उस स्वरूप को देखकर सनत कुमारों के मन में श्रद्धा जग गई और सनत कुमार भी जल्दी जल्दी चलने लगे। और भगवान शिव तो बहुत दूर जाकर सड़क के बगल में एक वट वृक्ष था, दक्षिण की तरफ मुंह करके उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बस ध्यान मुद्रा में बैठ गए। सनत कुमार थोड़ी देर में जब वहां पहुंचे तो देखा उसी बालक को, आहा ऐसे निर्जन जंगल में इतना छोटा बालक, अपने साथ कोई सामग्री नहीं, और क्या निश्चिंत ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ, उसको डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, ये असली गुरु तो यही है। लेकिन कौन है, हमको क्या लेना है, जो कुछ वो हम जैसा गुरु को लक्षण खोज रहे थे वैसा यह मिल रहा है, इसी को गुरु बनाना है, इसके अलावा तो अब तो और गुरु की संभावना ही नहीं है। बैठ गए वो भी वहीं घेर के बैठ गए। चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरोर युवा, गुरु युवा 5 वर्ष का, शिष्या वृद्धा 16 वर्ष के, बड़ वृक्ष है, आश्चर्य की घटना है, शिष्य लोग वहीं घेर के बैठ गए, जब भी समाधि तोड़ेंगे हम विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उपदेश करने के लिए कहेंगे, दीक्षा देने के लिए कहेंगे, महावाक्य का उपदेश करो कहेंगे, और उनकी कृपा से उपदेश होगा तो हम गुरु वाले हो जाएंगे, हमारी विद्या शास्त्र प्रमाण युक्त होगा, दीक्षा पूर्वक होगी, तब फिर हम निश्चिंत प्रचार करेंगे, फलीभूत होगी हमारी विद्या, विधिपूर्वक होने के कारण हमारी विद्या फलीभूत होगी। बैठ गए घेर के, लेकिन भगवान शिव है, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि कौन बैठा है आगे, कहां से आगे, कौन आगे, कुछ नहीं, निश्चिंत बैठे हैं। सनत कुमार भी बैठ गए हुए। तो कुछ समय के बाद भगवान शिव ने उसी मुद्रा में बैठे बैठे अंगुष्ठ और तर्जनी को जोड़कर धीरे से हाथ ऊपर उठाया, यो भद्रया मुद्रया, इसी को भद्रा मुद्रा, चिन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा बोलते हैं, ऐसे उठाया और इतने कंधे तक हाथ को उठा के फिर ध्यान में बैठ गए, कुछ बोले नहीं। सनत कुमारों को जब उन्होंने हाथ हिलाई तो लगा कि अब समाधि खुलेगा, अब ज्ञान देंगे, लेकिन फिर भी मौन हो गए। इतनी मात्र से उनके हृदय में बोध हो गया, सनत कुमारों के हृदय में अर्थबोध, अरे ये न बोले तो क्या है, उन्होंने ये जो मुद्रा बनाई है यही तो हमको उपदेश दिया है। बोले क्या उपदेश दिया, तो सनत कुमार ने कहा ये तत्त्वम असि इस महावाक्य के मुद्रा है, ये जीव ब्रह्म, जीव और ब्रह्म की एकता का ये संकेत है। तत्त्वमसि महावाक्य जीव ब्रह्म को एकता का उपदेश करता है, उपाधि से विनिर्मुक्त जीव ब्रह्म की एकता, ये तत्त्वमसि महावाक्य का आजकल प्रातःकाल प्रवचन श्रुतिसार समुद्धरणम में तत्त्वमसि इसी वाक्य पर ही बड़ा विचार चल रहा है। बोले ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति विषम है, तीन उंगली देखा कि नहीं, ये कभी बराबर की नहीं होगी, वो हाँ? ये कब होगी बराबर की, ये बोले एक बार होती है, ये तीन गुण के प्रतीक हैं तीन उंगली, और ये विषमता सृष्टि का प्रतीक है, प्रकृति के जो तीन गुण में विषमता रहती है तब ये विकार है प्रकृति का, और ये संसार प्रकृति का विकार है, क्योंकि गुणत्रय में विषमता है, और जब तीन गुणों में साम्यता आती है बराबर, तीनों गुण बराबर के हो जाएंगे, सत्व गुण भी 100%, रजोगुण भी 100%, तमोगुण भी 100% में बराबर इक्वल में पहुंचते हैं, तो प्रलय हो जाएगा, जगत में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं, महातत्व भी नहीं रहेगा, हाँ केवल अव्यक्त प्रकृति और परमात्मा रहेगा, दो के अलावा तीसरा नहीं रहेगा महाप्रलय में। हाँ महाप्रलय में द्वैत रहता है, लेकिन मोक्ष अवस्था में द्वैत भी नहीं रहता, इतना अंतर है देख लो। तो प्रकृति की साम्य अवस्था महाप्रलय है, सृष्टि का लय अवस्था है, प्रकृति में जब विषमता आती है तो फिर सृष्टि शुरू होता है, तो वही आप विषमता है इसलिए सृष्टि है, तीन उंगली कभी बराबर नहीं है, विषम है, ये त्रिगुणात्मिका विश्व प्रपंच का प्रतीक है ये, और इनके साथ ये जीव आत्मा जुड़ा हुआ है, ये तो क्या हुआ, त्रिगुणात्मिक जगत प्रपंच के जो धर्म है वो ये जीवात्मा में भी, इनके संयोग से जीवात्मा भी वो प्रपंच धर्म, देह धर्म, मनोधर्म, इंद्रिय धर्म, प्राण धर्म, प्रकृति के धर्म, बुद्धि के धर्म आदि सब जीवात्मा में भी संक्रमित हो गया, जैसे अग्नि के संयोग से लोहे में दाहकत्व संक्रमित होता है, इसी तरह त्रिगुणात्मिका प्रकृति के संयोग से जीवात्मा में जगत धर्म का भी संक्रमण हो गया। इसी तरह जगत में जन्म स्थिति प्रलय आदि षड्भाव विकार हैं, तो जीवात्मा में भी वह षड्भाव विकार दिखने लग गया, और तो जीवात्मा अपने आप को भी मैं जन्म वाला, बढ़ने वाला, मरने वाला, घटने वाला इत्यादि मानने लग गए। जब ये जीवात्मा इन त्रिगुणात्मिका प्रकृति से अलग होकर ये असंग, देखो असंग है ना, कितना स्पेस है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, और यहां कितना स्पेस है, जगत और ब्रह्म के बीच में जीवात्मा, जीवात्मा जगत के साथ जुड़ा तो जन्म मृत्यु भूगा भूख प्यास ये सब उसको लगेंगे, और ये यहां से कट होकर जब ब्रह्म के साथ जुड़ता है असंग के साथ, तो ब्रह्म में जो गुण धर्म आदि हैं, असंगता, नित्य, अविकारिता, सर्वव्यापकता, विभूता, सत्यता, वो सब जीवात्मा में भी आ गए। इसलिए जीवात्मा ब्रह्म की एकता का ये प्रतीक है, सिंबॉल है, तत्त्वमसि महावाक्य का ये अर्थ है। ये ज्ञान हमको तो महावाक्य का उपदेश कर लिया शिव जी ने, वाह, ये बालक ने, ये गुरु ने, ये अब बालक नहीं, हमारे दृष्टि में ये हमारे साक्षात गुरु हैं। सनत कुमारों ने, चारों ने उस बाल मूर्ति शिव जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो भगवान शिव दक्षिणा मूर्ति हो गए। उस बाल स्वरूप शिव का नाम है दक्षिणा मूर्ति, और इस स्वरूप का भगवान शंकराचार्य जी ने 10 श्लोकों से वंदना किए। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विबोध भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। तो सनत कुमार तो गुरु धारण कर लिया और चले गए, तो भगवान शिव ने कहा कि हो गया, अब इनका कल्याण हो गया, हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। वो आ गए कैलाश में, पार्वती को कहा कि हमको खाना दो, भोजन तैयार है कि नहीं, बोले तैयार है, लेकिन तुम गए कहां थे बताओ तो सही, बोले तुझे पता नहीं है हम गुरु बनने गए थे। हम कहां गए थे, गुरु बनने गए थे, और वही आज तक भी सदा शिव समारंभान शंकराचार्य मध्यमान अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। हम वंदना ही करते वो विद्या सदा शिव से सनत कुमारों में आकर वहीं से सुखदेव आदि में होता हुआ आज वर्तमान हमारे गुरुओं में जो हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं वही विद्या है, वही परंपरा है। तो सबसे पहला अब भगवान शिव क्या हुए इस परंपरा की दृष्टि से, इस प्रसंग से, लोक गुरु हुए। ये देखो सभी के गुरु तो वही हो गए ना, सबके गुरु तो वही हो गए, लोक गुरु हुए। मेरे चेले के भी चला, मेरे चेले जो मैंने दीक्षा दी है वो जो मेरे चेले होंगे उसके भी मूल गुरु कौन हो गया, शिव जी है, हो गया कि नहीं। तद्रुपान जी ने जिसको दीक्षा दी होगी उनके मूल गुरु कौन हो गए, वही शिव जी, वही तो परंपरा है सभी के पास। आज वर्तमान में जो अलग अलग गुरु हैं उनके पास जो दीक्षा विधि और विद्या है वो वही शिव जी का दिया हुआ है। इसलिए संबोधन यहां लोक गुरु, हे शिवा लोक गुरु, आपको गुरु बनने का बड़ा शौक है, पत्नी को भी छोड़ दिया गुरु बनने के लिए, भोजन भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, और थोड़ी देर गुरु बनने के लिए आप भाग गए, बालक बनकर चल गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, लगौटी लगा ली गुरु बनने के लिए, बागम्बर फेंक दिया, लगौटी लगाकर बैठ गए, तो आप गुरु बनने के बड़े शौकीन हैं। लेकिन जब तक गुरु बनने के लिए जो सेवा करनी चाहिए, तो जो सेवा नहीं करेगा उसको आप शिष्य भी नहीं बनाएंगे, उपदेश भी नहीं करेंगे। तो मैं तो आपका सेवक हूं, तत्पादाम्बुज अर्चयामि परमम शिवम, मैं अपने हाथों से आपके चरण कमल की नित्य सेवा करता हूं, अर्चयामि तत्पादाम्बुजम अर्चयामि परमम तम चिंतयाम्यन्वहम अनुअहम। अह माने दिन, प्रतिदिन, अनु माने प्रतिदिन, अनु माने पश्चात, आज के दिन तो शिव पूजा की और कल जो दिन आएगा उस दिन भी, फिर उसके अब दूसरा अनुअहम, अनुअह तम अनुअहम प्रत्येक दिन तम चिंतयामी बुद्धिया, हाथ से भगवान शिव के नित्य निरंतर प्रतीकों के विग्रहों के पूजा करो, तो पादाम्बुज अर्चयामि परमम त्वं चिंतयाम्यन्वहम्। और बुद्धि से नित्य निरंतर परम तत्व का, शिव तत्व का चिंतन कर। त्वामी शरणम व्रजामि वचस, हे ईसा त्वं शरणामि शरणम व्रजामि, चरणों से मैं तुम्हारी शरण में ही हूं। मैं जहां भी हूं मैं विचरण करता हूं, मैं आपके शरण में ही हूं। त्वामी सम शरणामि, मैं और किसी के शरण में नहीं हूं। भूख लगी तो भी मैं चाहता हूं कि तुमसे ही भोजन पाऊं। प्यास लगी तो मैं चाहता हूं कि तुमसे ही पानी की प्राप्ति हो और तुमसे ही प्रार्थना करूंगा, और शायद मुझे तो यह विश्वास है कि आप पानी बनकर भी मेरे प्यास को पूरा करते हो। तो हम शरण है हम, तुम आपस तुम व्योमा तुम उदाहरण आत्मा तुम ही टीचर। पुष्पदंताचार्य जी ने कहा ना, हे शिवा मुझे पता है तुम पृथ्वी हो और अन्न उत्पन्न करने के लिए तुम खुद पृथ्वी बन गए हो, और भूखों को भोजन देने के लिए पृथ्वी बनकर अन्न उत्पन्न करते हो। अन्नम ब्रह्मे इति विजाना तो उपनिषद ने कहा है, इसीलिए क्योंकि अन्न का उपादान कारण और आश्रय पृथ्वी और पृथ्वी खुद शिवरूप। तो आप भूखों को भोजन देने के लिए पृथ्वी बनकर अन्न उत्पन्न करके भूख निवृत्ति भी करते हो, तो तुम्हारे को आश्रय छोड़कर और किसके पास जाए। और प्यासों को पानी बनकर तुम धरणी तुम आप, भगवान शिव खुद जल बनकर बह रहे हैं, और आपने आप जल बनकर अपना ही घर उजाड़ लिया केदारनाथ में, देख लो तो रुद्र हो गए वो। वास्तव में बहुत ही प्रकृति प्रकोप हुआ, पोल्यूशन बहुत, इतने पोल्यूशन हो गया था तो प्रकृति का प्रकोप हो गया, तो पोल्यूशन के चलते प्रकृति में बैलेंस नहीं रहा। नहीं तो पहाड़ों में बारिश नहीं होती है सामान्यतया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जहां पेड़ नहीं है वहां बारिश नहीं होती है, एक वैज्ञानिक थियरी भी है। अब वहां पेड़ नहीं है, बादल फटने की क्या जरूरत है बोलो? जहां पेड़ ही नहीं है वहां बादल फटने का कोई क्या जरूरत है? फिर फट गया, चट्टान हो गया और बारिश आ गए, पूरा केदारनाथ मंदिर मलवा में बारिश का तो पानी और पत्थरों के कचरे में सब डूबा हुआ है बेचारा। इसलिए हे शिवा त्वमेव शरणम, मैं तुम्हारे शरण में हूं, मुझे जो चाहिए तुमसे पूरा हो सकता है, और मेरे प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते संसारी लोग। इसलिए एक कवि ने कहा, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा मनोरथान पूरी तुम समर्थ, मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूरा करने की क्षमता थोड़ी बहुत दिल्ली स्वर में है, और पूरे रूप में मनोरथ पूरा करने की क्षमता तो जगदीश स्वर में ही है। इनके अलावा अन्य निरपाल परिदीय माना, और राजाओं के द्वारा दिया हुआ जो वस्तु है द्रव्य है वो तो साकाय वास्यान लवणाय वास्यान, वो तो साग और नून के लिए पूरा होगा, उसके लिए भी पूरा हो कि ना हो है? बोलो, कोई राजा प्रसन्न होकर 1,00,000 रुपया दे देगा, आप हिसाब करिए कि एक कुटुंब के लिए 1,00,000 रुपया कितनी वर्ष के लिए नमक के लिए पूरा होगा, नमक का भाव आप लोग हिसाब करने में फट से हो, कितना रुपया किलो है आजकल हमको तो पता नहीं है, है? सामान्यतया 12 रुपया 1 किलो का, अब 1,00,000 डिवाइडेड बाई किलो, अब कितना किलो कितनी वर्ष में, तो कितनी वर्ष आएगा उसकी सीमा है कि नहीं बोलो? उसके बाद क्या होगा उसका 1,00,000 रुपया से नमक, उसके बाद क्या खाएंगे नमक, कौन देगा? अरे वो सब पूरा करने वाला तो भगवान शिव जगदीश्वर ही है, उसके शरण में जाना चाहिए। उसके अलावा और के शरणों में क्यों जाना, मरण धर्मा के शरण में क्यों जाना, अमर के शरण में ही जाना चाहिए। त्वामी सम शरणम ब्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभु, वाणी से हे शिव आपकी ही स्तुति प्रशंसा गाऊंगा और आपसे ही याचना करूंगा, तुम्हारे शरण में रहते हुए तुमसे ही याचना करता हूं। वीक्षा मे दिश चाक्षुषीम सकरुणाम दिव्य चिरम प्रार्थिताम। स्वर्गस्थ देवताओं ने भी दीर्घ काल तक भगवान शिव के दर्शन की आलासा अभिलाषा करते हुए, प्रयत्न करते हुए, प्रार्थना करते हुए भी उन देवताओं को भी, इंद्र आदि देवताओं को भी, जो दर्शन के लिए दुर्लभ हजूर का जो आपके जो स्वरूप है, वीक्षा मे दिशा चाक्षुषीम, मैं अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख सकूं। और या सकरुणा, मेरे प्रति आप करुणामय दृष्टि से वीक्षाम देखें, मुझे देखें। शंभो लोक गुरो मदीय मनस, हे शंभो, हे लोक गुरो, सबके कल्याण करने वाले और सबके गुरु हैं, उपदेश करना आपको बहुत शौक है, तो फिर मदीय मनस, इस मेरे जो एक मन है उसको मैंने सुयोग्य बना रखा है, संसार से विरक्त भी हुआ है, आपके भक्ति से अनुरक्त भी हुआ है, मेरे बस में है, मेरे आज्ञाकारी है, उद्दंड नहीं है, मैंने काफी इसको अनुशासित कर रखा है आज तक, इसलिए उस मन को आप सुख का, ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। सुख का उपदेश सौख्यम उपदेशम कुरु, किसको? मदीय मनस, मेरे मन को आप समझाइए। मदीय मनस सौख्यम, सुख का, सुख का माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या में ही सुख है, अन्यत्र सुख नहीं है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।